सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् आत्मा ज्ञानम् स्वयं ज्ञानम् ज्ञानातन्नत्करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरन्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे
यह कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार को हम देख रहे हैं। चौथे नंबर के पृष्ठ पर हम आए हैं, चार नंबर का पृष्ठ। देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अनेकांतमय मूर्ति है वह जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही अनेकांतमय मूर्ति कहा गया है। और वो ज्ञान कैसा है कि जो केवल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, और वह वचनात्मक है और ज्ञानात्मक है, इसलिए वचन में और ज्ञान में ऐसा कहा है। ये इसकी बात अपनी चल रही थी और कल वो बात हो रही थी कि ये आत्मा में जो अनंत धर्म है वो कौन से हो सकते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी झलक दिखाई है। उस झलक के बाद यहाँ पर समझा रहे हैं। कल तो हमने देखा था क्या कि उसमें अनेक प्रकार के गुण भी है और धर्म भी है, तो गुण किसको कहना और धर्म किसको कहना इस बात का भी थोड़ा सा हम पहचान कर लेते हैं। तो गुण जो होते हैं उन गुणों को हमेशा पर्याय होती है, लेकिन धर्म जो होता है उस धर्म की पर्याय नहीं होती। जैसे नित्य अनित्य यह धर्म है, लेकिन ज्ञान दर्शन यह गुण है। ज्ञान और दर्शन की पर्याय होती है लेकिन नित्य रूप से कोई पर्याय नहीं है, और धर्म नाम की कोई पर्याय नहीं। वैसे देखा जाए तो धर्म कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, इनका कभी कभी एकार्थवाची शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है, यानी तीनों का अर्थ भी एक है ऐसा बताते हैं, लेकिन थोड़े से उसमें गहराई में जाने से शक्ति भी जो कहते हैं वो भी अलग है, गुण भी अलग है और धर्म भी अलग है। अब ये जो पृष्ठ क्रमांक चार पर जो आखिरी पैराग्राफ है वो हम देखेंगे। आत्माना अनंत धर्मों मा चेतनपनु असाधारण धर्म छे। असाधारण का अर्थ क्या है वासंती में आप जानती है? असाधारण धर्म है। तेजू में आप जानती है? वीरेश भाई नहीं जानते, कोई बात नहीं, हमारे सौभाग्य चंद जी बताएंगे। देखो एक शब्द में आप कह सकते हो असाधारण का अर्थ विशेष गुण है, साधारण यानी सामान्य। आपने बताया था, जोर से बोलना चाहिए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि हम विनोद भाई जितना तो जवान नहीं हूं, काफी बूढ़ा हो गया हूं, तो मैं सुनता भी कम हूं, क्यों साहब? बिल्कुल जोर से बोलना, घबराना नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरी मान्यता गलत हो सकती है, कि जो आस्ते आस्ते बोलते हैं ना हमारे तेजुबेन जैसा, उसको कभी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऐसा टुप 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 बोलेंगे तो समझना का कि इस पर पक्का मालूम नहीं है, जोर से बोलने का मंदोबिन जैसे दोनों ही जोर से नहीं बोलती। हाँ तो क्या कहते हैं देखो, आत्मा ना अनंत धर्मों में चेतनपनु असाधारण धर्म छे, यानी ये चैतन्यपना जो है वह ऐसा गुण है कि वो बिल्कुल असामान्य है कहो, असाधारण है कहो, विशेष गुण है। और विशेष गुण तो हम उसी को कहते हैं कि जो अपने अपने द्रव्य में रहता है, अन्य द्रव्यों में नहीं रहता, इसी को हम असाधारण कहो या विशेष गुण कहते हैं। तो इसका अर्थ यह निश्चित हो गया कि जीव द्रव्य में ही चैतन्यपना है, चैतन्य नाम का गुण है, और वह चैतन्य कहो या ज्ञान दर्शन गुण कहो, उसका दोनों का अर्थ एक ही है। क्या कहा? आत्मा ना अनंत धर्मों में चेतनपणु असाधारण धर्म छे, बीजा अचेतन द्रव्यों में नथी। ये उसी का उन्होंने अस्ति और नास्ति दोनों अपेक्षा से कथन किया। सजातीय जीव द्रव्यो अनंत छे, तेमना माए जो के चेतनपणु छे, तो पन सौनु चेतनपनु निज स्वरूपे जुदू जुदू कहूं। क्या कहा? ये बात बहुत मार्मिक है और समझने लायक है। क्या कहते हैं कि बीजा अचेतन द्रव्य में ये चेतनपणु नथी, तो शू कहे? सजातीय जीव द्रव्य अनंत छे, इसका अर्थ क्या होगा नलिन भाई, आप जानते हैं? यानी क्या? सजातीय जीव द्रव्य अनंतो छे, हाँ, यानी जीव संख्या की अपेक्षा से अनंत है। सजातीय क्यों कहा? कि उनमें विजाती भी अलग है ना, धर्म द्रव्य, आपने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, तो जीव द्रव्य जो है वैसे कितने हैं? तो कहते हैं अनंत है। तो इन सब अनंत द्रव्यों में चेतना गुण है, तो कितने गुण होंगे? तो एक गुण है चेतना। तो कहते हैं हरेक का अपना अपना चेतन द्रव्य अलग होगा। क्या कहा? देखो देखो, तेमना माय जो के चेतनपणु छे, तो पन सौनु चेतनपणु निज स्वरूपे जुदू जुदू कहूं छे। क्यों? अगर हम ऐसा मानते हैं क्या कि नहीं, भले अनंत जीव द्रव्य होवे लेकिन सब में चेत, क्योंकि वो असाधारण गुण है, तो असाधारण गुण है तो क्या होगा? एक ही चेतन गुण सब द्रव्यों में पाया जाता है, एक ही चेतन गुण सब द्रव्यों में पाया जाता है, तो हम कौन सी मिस्टेक करते हैं?
सर्वज्ञ की मिस्टेक करते हैं।
अच्छा, सर्वज्ञ की मिस्टेक करते हैं। आपका क्या कहना है? दूसरा कौन बोलेगा? हाँ बोलो सब। द्रव्य की स्वतंत्रता, अच्छा, जो द्रव्य की स्वतंत्रता की भूल करते हैं। और कोई बताना चाहता है? हाँ, आप नहीं आइए, सुना तो है लेकिन। हाँ बोलो बोलो। अरे भगवान, देखो अभी प्रश्न ऐसा है कि पहले हमने देखा ये चेतन नाम का जो द्रव गुण है जीव द्रव्य का, वो उसका असाधारण यानी विशेष गुण है। अगर यह एक विशेष गुण हम सब जीव द्रव्य तो अनंत है, तो सब द्रव्यों में वह एक ही गुण पाया जाता है, ऐसा अगर हम मानते हैं कहते हैं, तो हम कौन सी भूल करते हैं? अभी प्रश्न समझ में? हाँ बोलो, आप बताना चाहते थे? हाँ, आप क्या कहते हैं? है ना, पर कोई मानता हो तो कौन सी मिस्टेक करता है, ऐसी अपनी बात है। हाँ अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। देखो पहले ये समझ ला हम गुण किसको कहते हैं, आपने पढ़ा है ना, गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में, तो क्या होगा? जैसा ही आपने बताया कि सब द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे, सब छह द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य, सब जीव द्रव्य जो अनंत जीव द्रव्य हमने देखे हैं वो एक ही हो जाएगा। क्यों? वो जो चेतन गुण है वो सब द्रव्य के संपूर्ण भागों में, ऐसा होगा तो कितना हो जाएगा? अरे एक जीव द्रव्य जो असंख्यात प्रदेशी है उसका वह गुण है तो वो उसके संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाएगा। और हम क्या मान रहे हैं, एक ही चेतन गुण आप में सब में एक ही है तो ये सारे द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जो अभी किसी ने बताया कि द्रव्य की स्वतंत्रता नष्ट होगी, सब द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे, ये पार्शली बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन मूल बात क्या है कि हमने तो गुण की परिभाषा भी को उड़ा दिया, यानी गुण की परिभाषा उड़ गई तो सब द्रव्य भी खत्म हो गए, द्रव्य की स्वतंत्रता भी ना, बस बाकी बस सब बात। यहाँ देखो एक एक जो शब्द यहाँ वापरा गया है या एक एक वाक्य जो है उस वाक्य को हम थोड़ा अलट पलट कर पढ़ने को कोशिश करेंगे तो भूल होती है, ये भी ध्यान में रखना। इसलिए क्या बताया देखो, सेकंड लाइन से फिर से पढ़ता हूँ, सजातीय जीव द्रव्य अनंत छे, उसके पहले क्या बताया, आत्माना अनंत धर्मों में चेतनपनु असाधारण धर्म छे, बीजा अचेतन द्रव्यो में नहीं तो अन्य द्रव्य नलिफाई हो गए, बराबर। तो कहते सजातीय जीव द्रव्यो अनंत छे, तेमनाय जो के चेतनपनु छे तो पन सौनु चेतनपनु निज स्वरूपे जुदू जुदू कहूं छे, कारण के दरेक द्रव्य ने प्रदेश भेद हुआ थी। अब यहां एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई नु कोई मां भड़तू नथी, यानी एक में दूसरा गुण नहीं जाएगा, आ चेतनपनु पोताना अनंत धर्मों में व्यापक छे तेथी तेने आत्मानु तत्व कहूं छे, तेने आ सरस्वती नी मूर्ति देखे छे अने देखाड़े छे, ए रीते ए नाथी सर्व प्राणीओनु कल्याण थाय छे माटे सदा प्रकाश रूप रहो एवं आशीर्वाद रूप वचन तेने कहूं छे। ये पहले उन्होंने देव को नमस्कार किया, यानी इष्ट देव को, इसमें तो सारे स्वभाव रूप से तो सब जीव द्रव्य आ गए, उसमें सिद्ध भी आ गए, और क्योंकि दोनों तरफ से वो मतलब द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है, इष्ट देव वो भी हो गए। अब यहाँ तो वाणी आ गई, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि की बात ले रहे जिसको सरस्वती कहा है। अब ये त्रिजा
ऐसा प्रश्न है, यहाँ सरस्वती की मूर्ति देखे छे ने देखाड़े छे, ऐसा क्यों कहा? हाँ बोलो बस। हाँ क्या अपेक्षा है, देखे छे में क्या अपेक्षा और देखाड़े छे में क्या अपेक्षा है? नहीं वो बात नहीं यहाँ। हाँ बोलो
सरला बेन, आप बताएंगे?
ज्योत्सना बेन बताए। हाँ देखाड़े छे केवी रीते? हाँ बोलो। हाँ केवल ज्ञान देखे छे देखाड़े छे ने देख नहीं
मैं
सरस्वती की मूर्ति किसको कहा है इस गाथा में?
ज्ञान और वचन,
ज्ञान और वचन
देखो
सम्यक ज्ञान पहले आया था, सम्यक ज्ञान को कहो या केवल ज्ञान को
देखो
कहो?
हम अन्वयार्थ में श्लोकार्थ में देखो जेमा अनेक अंत एटले धर्म छे एवं जे ज्ञान तथा वचन, ये बात आई ना, तो वही कह रहे यहाँ पर ज्ञान जे आत्मा ने शू कीधु देखे छे एटले जाने छे कहो ते ज्ञान थी अने वचन थी बीजाने देखाड़े छे, तो ये केवल ज्ञानी जो है वो केवल ज्ञान से जानते हैं और दिव्य ध्वनि से बताते हैं। मैं ये रह गया मेरे से। हाँ चलो आगे आगे, बहुत अच्छा।
जीव अपने को जानता है यानी वो सरस्वती की मूर्ति को देखता है, और देखाड़े छे ने वो वचन से द्रव्य शुद्ध जिसको कहा, आगम जिसको कहा है, आगम के द्वारा ये दूसरों को बताया जाता है, इसलिए देखाड़े छे। और किसको देखता है? अपने को। इन्हें अभी क्या बात की थी, चेतन चैतन्यत्व जो चैतन्य है वो आत्मा का असाधारण गुण है, वो प्रत्येक का अपना अपना है, उसी को आत्मा का तत्व कहा है, और सरस्वती की मूर्ति इस तत्व को देखती है अपने अपने, और देखाड़े छे ने शास्त्र में इसी का वर्णन आता है, इसलिए अन्य जीवों को भी इसका उपदेश मिलता है, इसलिए देखे छे और देखाड़े छे ऐसे दो शब्द आ गए। अब आगे बढ़ेंगे।
अभी ये जो चौथे पेज पे तीसरा जो कलश है वो हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, बोलो।
मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्ययैवानुभूते। हाँ? पहले रह गया, सॉरी सॉरी,
आधा पहले, दोनों पेज रह गए। सॉरी सॉरी, तीन पृष्ठ पर, तीन पृष्ठ पर, यहाँ यहाँ ऊपर माली ने लिखा है ना,
पर परणति हेतोर मोह नाम नोनुभावात् अविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्ययैवानुभूते।
अभी इसका अर्थ यहाँ पृष्ठ क्रमांक 5 पर दिया है। देखो अभी हमने ऊपर की 3 लाइन पढ़ी थी, अभी आगे कहते हैं हवे त्रिजा श्लोक मा टीकाकार आ ग्रंथनु व्याख्यान करवाना फलने चाहता प्रतिज्ञा करे छे। ये सारी जो हम श्लोक, सारे श्लोक पढ़ रहे हैं, ये टीका की शुरुआत है। अमृत चंद्राचार्य ने जो आत्मख्याति नाम की जो टीका लिखी है उसी की ये बात की शुरुआत है। अभी तक तो हमने समय सार को हाथ तक नहीं लगाया है, आत्मख्याति को ही हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं श्लोकार्थ, श्रीमान अमृत चंद्र आचार्य कहे छे के समय सार व्याख्याया एव व्याख्याया एव आ समय सार शुद्धात्मा तथा ग्रंथनी व्याख्या। देखो ये समय सार का दो प्रकार से अर्थ किया है। समय सार कहते ही जो समय याने द्रव्य, समय याने आत्मा, दोनों अर्थ हो सकते हैं, यहाँ आत्मा लेना, और उसमें जो सार है ये आत्मा में जब सार कौन है तो सिद्धात्मा जो है, और समय सार नाम का जो ग्रंथ है, ये दोनों की आ समय सार नी व्याख्या कथनी तथा टीका थीज मम अनुभूते है मारी अनुभूति नी अर्थात अनुभवन रूप परिणति नी परम विशुद्धि ही। परम विशुद्धि एटले समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता भवतु थाओ। अभी क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक जिनमें वीतरागता वर्तती है, ऐसे वीतरागी संत भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मेरी जो अनुभूति है, मेरी जो परिणति है वह परम विशुद्ध हो जाओ। क्यों? अभी तो आप इतने उच्च पद में स्थित है फिर भी, लेकिन जो केवल ज्ञानी जो हुए हैं उनकी अपेक्षा अभी भी उनमें मोह बाकी है। क्या कह रहे हैं कि मेरे जो ये मोह है, देखो श्रीमान अमृत चंद्र आचार्य कहे छे के, अभी सिर्फ गुजराती पढ़ता हूं, आ समय सार शुद्धात्मा ग्रंथनी व्याख्या थीज मारी अनुभूति नी अर्थात अनुभवन रूप परिणति नी परम विशुद्धि थाओ। तो अभी तो परम विशुद्धि नहीं आपकी, नहीं तो क्या हो रहा है? तो कहते हैं हम मोह में अटके हैं, हम राग में फंसे हुए हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या कि यह जो लिखने का जो कार्य हो रहा है वो कौन से गुणस्थान में होगा? वीरेश भाई छठे, तो छठा गुणस्थान का नाम याद है तेजुबेन? बोलो बोलो बोलो। प्रमत्त विरत, तो प्रमाद सहित जो है ऐसे गुणस्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। तो ये जो मुनिराज है वो प्रमाद अवस्था में है, और वो प्रमाद कौन सा है? तो उनके उच्च प्रति का राग आ रहा है। कौन सा? शास्त्रादि लिखने का। तो ये शास्त्रादि लिखने का भी प्रमाद है उन्हें, ये मुनि अपेक्षा से अपने स्वरूप में एकाग्र रहना यही अप्रमत्त अवस्था है। और ये शास्त्र लिखना या किसी को उपदेश देना, ये सारी जो शुभ प्रक्रिया शुभ भाव जो है वह तो उनके लिए प्रमाद है। वो जानते हैं कि मैं अपने स्वरूप में अधिक काल स्थिर नहीं रह सकता हूँ, यह मेरी कमजोरी है, इसलिए कहते ये लिखते लिखते मेरी परिणति परम विशुद्ध हो जाए। देखो कैसी भावना है। और हम तो भगवान के सामने जाके कहते आज मुझे लॉटरी लग जाए, हा? नहीं ऐसा नहीं करते, तो कम से कम कांजूर मार्ग में बड़ा जगह मिल जाए ऐसा तो बोलते होंगे कि नहीं नहीं जो हो गया सो हो गया, क्या करें अभी आया सो हाँ चलो। तो क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ तो मुनिराज की जो अवस्था है उसका रिफ्लेक्शन उनके लिखान में आता है। वो तो ये समझा रहे हैं कि मेरी परिणति परम विशुद्ध हो जाए ऐसी मैं भावना करता हूं। इसी के लिए क्या लिखा ऊपर कि टीकाकार ग्रंथ नु व्याख्या करवाना फलने चाहता प्रतिज्ञा करे छे। यानी वो प्रतिज्ञा भी कौन सी है कि यह जो मुझे बारंबार लिखने का विकल्प आता है उससे भी छूट कर मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं। ख्याल में आया? और क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पढ़ने में हमको समझो 2 महीना लगते होंगे, तो उनको लिखने में कम से कम 1 महीना तो लगा होगा। लगातार लिखते ही रहे, लगातार लिखते ही रहे, क्या ऐसा हुआ होगा? ब्रह्मा बहन क्या किया होगा कभी? कितने टाइम में? अरे अंतर मुहूर्त से अधिक काल वो छठे में नहीं रहेंगे। ख्याल में आया? तो छठे में से 7वें में लिखते लिखते अपने स्वरूप में एकाग्र होते, और फिर जो अंदर में आनंद की जो लहर छुटती है, वो अंदर में जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, उससे जो कुंद आचार्य ने जो बात बताई वो अधिक खुल जाती है और उनके लिखने का और प्रमाद बढ़ जाता है, प्रमोद बढ़ जाता है। ख्याल में आया? देखो फिर से पढ़ता हूं। श्रीमान अमृतचंद्र आचार्य कहे छे आ समय सार एटले शुद्धात्मा तथा ग्रंथनी व्याख्या एटले कथनी तथा टीका तीज मारी अनुभूति नी अर्थात अनुभवन रूप परिणति नी परम विशुद्धि थाव। अभी ये परम विशुद्धि किसलिए कहा? समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता थाव। परम विशुद्धि का अर्थ ख्याल में आया? केवी छे ते परिणति? पर परिणति है तो मोह नामना अनुभवात पर परिणति नु कारण जे मोह नाम नु कर्म तेना अनुभव एटले उदय रूप विपाक ने लीधे अविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। जे अनुभाव्य एटले रागादि परिणामों नी व्याप्ति छे तेना थी निरंतर कलमाशित एटले मेली छे। अभी क्या कह रहे हैं? ये परिणति जो अभी मेरे में जो उठ रही है वो कैसी है? तो कहे कि वो कलमाशित है यानी मल स्वरूप है यानी मेल है। गुजराती में मल स्वरूप का अर्थ मेल छे। तो क्या कह रहे हैं? ये क्यों हो रहा है कि मेरा ध्यान बारंबार पर पदार्थों के तरफ, ये लिखने के तरफ या इनके रचना करने की तरफ जो जा रही है वह परिणति नु कारण शू छे? तो कहे छे के रे मोह नामनु जे कर्म छे एना उदय ना कारणे अनुभव एटले उदय रूप विपाक ने लीधे जे अनुभाव्य, अनुभाव एटले जे अनुभव छे एना कारणे जे अनुभव एटले पोतानो जे परिणाम थाय छे रागादि परिणामोनी व्याप्ति छे यानी ये उत्पन्न थाय छे। हाँ ए बन्ने नो अविनाभव छे। तेनाथी निरंतर कलमाशित छे यानी बार बार ये उदय भी आ रहा है और मैं उसमें जोड़ा भी जा रहा हूँ इसलिए यह मेरी परिणति मेली है। देखो कितना ये क्या कह रहे संज्वलन क्रोधमान माया लोक का जो एकदम सबसे एकदम हीन प्रकार का जो कषाय है कैसा उसके तो ऐसा वर्णन करते हैं कि जैसे हम पानी के अंदर लकड़ी से एक लकीर खींचे समझो 10 फुट से चालू हो गए और अपने तक आए जब तक तो पहले के 6-7 फुट तो है कि नहीं बराबर हो जाए ये जैसा तुरंत मिट जाते हैं ऐसे जो कषाय है उन कषायों को भी कहते निरंतर कलमाशित थाई छे। अरे दिगंबर संतों की तो क्या कथन ही कहने, उनके स्वरूप का तो वर्णन करते करते हमें तो भैया हम पार नहीं पावे ऐसी बात है। तो यहां तो कह रहे हैं कि ये निरंतर कलमाशित छे एनो अने हूं के वो छू वो तो परिणति है वो पर्याय है वो पर्याय जितना तो मैं नहीं हूं तो मैं कैसा हूं? तो कहते शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते है द्रव्य दृष्टि थी शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति छूं। द्रव्य दृष्टि यानी जब द्रव्य जो है मेरा जो स्वभाव भाव जो त्रिकाली भाव है द्रव्य स्वभाव उसके दृष्टि से उसकी अपेक्षा से जब हम स्व को देखते हैं तो कैसा है कि शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति छूं, मेरे में एक टका भी अशुद्धता नहीं है, मेल नहीं है, ऐसा मेरा जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है उसकी मैं समझ लो कि मूर्ति हूं, ऐसा मैं हूं। लेकिन क्या करूं, अभी भी मेरे में जो मोह बाकी है उस मोह कर्म के कारण जो उदय आता है और उसमें मैं जुड़ जाता हूं तो मेरे में ये रागादि की मेली परिणति उत्पन्न होती है और उन परिणति का नाश होकर मुझे कहते हैं कि परम विशुद्धि की प्राप्ति हो जाए। ये शास्त्र लिखने के पीछे, अरे मेरा शास्त्र लिखूं तो मैं पूरे हिंदुस्तान में उसकी 50,000 कॉपी 10 लाख कॉपी बना के भेजूं ना तो मेरा नाम सब जगह होगा, ऐसी भावना नहीं भरे क्या? तो ये भावना भरे कि मेरी जो परिणति जो अभी मतलब पर्याय जो है वह अभी मलिन है उसमें शुद्धता प्राप्त हो जाए, यही मैं भाता हूं। भावार्थ आचार्य कहे छे के शुद्ध द्रव्यार्थी नैनी दृष्टिये तो हूँ शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति छू। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं यानी जो जैसा मेरा स्वरूप है वह स्वरूप का कथन करने वाला जो नय है वह द्रव्यार्थिक नय है और द्रव्यार्थिक नय के भी अनेक भेद हैं चार, उसमें से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय नाम का जो कोई सर्व से उत्कृष्ट ऐसा शुद्ध स्वरूप से आत्मा का कथन करने वाला जो नय है उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा। और उस अपेक्षा से जब हम यह आत्मा को देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, यानी मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही हूं। भाई ये आचार्य मानते हो तो उनको हमको क्यों समझाते हैं, तो मानते हो तो मानने दो। अरे प्रभु यहां तेरा ही स्वरूप ज्ञान दर्शन मात्र है, तू स्वयं ज्ञाता दृष्टा ही है, जानने और देखने के अलावा तू कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा प्रथम में प्रथम मान तो सही। ख्याल में आया? तो कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के दृष्टि से तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, परंतु मारी परिणति मोह कर्मना उदयनु निमित्त पामी ने मेली छे रागादि स्वरूप थई रही छे। अब यहाँ तो निमित्त की भाषा से बताया है, यहाँ जो कुछ रागादि परिणति इस जीव की हो रही है वो स्वयं के अपराध से हो रही है, स्वयं के कमजोरी से हो रही है। यहाँ पुरुषार्थ की निर्बलता है, निर्बलता हो निर्मलता नहीं, निर्बलता कमजोरी, क्यों? अपने स्वरूप में टिके रहने की उसमें अभी उतनी योग्यता नहीं आई है, इसलिए वह अपने स्वरूप से बाहर निकलती परिणति उसको यहाँ कहा है कि वो कर्म के उदय के निमित्त से, कर्म का उदय उसको नहीं नचा रहा है, ये तो कहने की बात है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये समझा रहे हैं के मारी परिणति मोह कर्मना उदयनु निमित्त पामी ने मेली छे रागादि स्वरूप थई रही छे। ख्याल में आया? देखो एक एक बात जो है उस एक एक बात से भी हमें बिल्कुल समझ में लेना चाहिए। यहां तो ये समझा रहे हैं कि ये जो मोह कर्म का उदय है और उसके निमित्त से मेरी परिणति इस जैसी हो रही है, यह तो निमित्त का कथन है, कर्म का उदय आया इसलिए मुझे स्वरूप में से बाहर आना पड़ा, ऐसा नहीं है क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि परद्रव्य से कोई कार्य होता होगा तो परद्रव्य करता और यहाँ कार्य हुआ है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध और थोड़ा सा आगे जाओ तो है तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध। परद्रव्य जो है वह तो ज्ञेय है और मैं जो हूँ वो ज्ञाता हूँ, तो इस ज्ञाता ज्ञेय संबंध को तोड़कर निमित्त नैमित्तिक संबंध को छोड़कर हमने व्याप्य व्यापक संबंध माना है, यानी आपने जो बताया कर्ता कर्म संबंध माना है, तो दो द्रव्य मिलकर एक हो जावे ऐसा कभी होगा ही नहीं। यह तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें मानना इष्ट है। तो यहाँ पर यह समझा रहे हैं कि ये कर्म के उदय के कारण इस जीव की परिणति हुई नहीं है, यहाँ तो कहे मोह कर्म के उदय के निमित्त से, यानी इस जीव ने राग किए हैं वह स्वयं के अपराध से हुए हैं। कौन सा राग? अरे शुभ राग, उसको अपराध का ओ क्या, हाँ घबराना मत। अरे जो तेरा शुद्ध स्वरूप है उसमें ना पाप परिणाम है ना पुण्य परिणाम है, ना अशुभ राग है ना शुभ राग है, यह तो मेल है, यह तो विभाव भाव है, तेरा स्वभाव भाव है नहीं। और हम तो चाहते हैं कि हम तो राग करते करते वितराग हो जाए। क्या समझ में आया? क्या समझाया? देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परंतु मारी परिणति मोह कर्मना उदयनु निमित्त पामीने। यहाँ आरोप तो निमित्त पर किया है लेकिन कथनी तो होती है निमित्त से और कार्य तो होता है उपादान से। ख्याल में मेली थी जी रागादि स्वरूप थी रही चित्ते थी शुद्ध आत्मानी कथने रूप जे आ समय सार ग्रंथ छे तेनी टीका करवानु फल ए चाहूं छूं के मारी परिणति रागादि रहित थई शुद्ध थाओ। मारा शुद्ध स्वरूपनी प्राप्ति थाओ बीजू कायपन ख्याति लाभ पूजा दिक चाहतो नथी। अभी मैंने कहा ना कि इतने उसके ग्रंथ छपे और यहां तक बटे जाए ये करे वो नहीं। अरे तुम्हें तो जैन साधुओं का तो पता ही नहीं है, आपको मालूम है वो तो पहले जमाने में कागज पेन पेंसिल ये नहीं था, वो तो ताल पत्र पे लिखते थे और ताल पत्र पे ऐसे हाथ से ऐसा घुटाई करके लिखे ऐसा, और वो ऐसा बगल में डाल के आगे जाते दूसरे गांव में, फिर उधर वो वहीं के वहीं छोड़ देते थे, आगे जाके दूसरा कहीं लिखना हो तो वह लिखते थे, ना साथ में पेन पेंसिल कुछ नहीं रखते थे क्या? हाँ जी वो जैसे बोरू जैसा कुछ होता था समझ लो, वो कैसे लिखते थे वो है उस टाइप की जो उनकी लकड़ी जो होती थी वो ऐसा उसके अंदर डाल के फिर ऊपर से कुछ उसमें रसायन वगैरह डाल के वो परमानेंट होता। और तुम्हारे हमारे जैसे कोई उनके भक्त होंगे वो जानते होंगे कि ये फलाने मुनि महाराज लिख रहे हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर साथ में रहें और जैसा उनका लिखना हो गया तो जमा करके रखें, तो वो कितने भाग्यशाली। अरे वो काहे के भाग्यशाली, ये हमें बैठे घर में बैठे बैठे बिना पैसा खर्चे पढ़ने को मिल रहा है शास्त्र, तो उनके हमारे ऊपर कितने आनंद उपकार है कि जिन्होंने ये सारा इकट्ठा करके रखा। और ये हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हम भी महाकलंकित हो जाएंगे, जो हमारी आज से समझ लो 200-500 पीढ़ी जो कुछ हुई होगी तो वो पीढ़ी से दर पीढ़ी से दर पीढ़ी ऐसे करते करते आज तक हमारे हाथ में आए। हम तो हमारे बच्चों के नाम पे 5-50 करोड़ रुपया रख के जाना चाहते हैं लेकिन ये जैन दर्शन का जो संस्कार है भाई आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लगा रहे? क्या कोई सुनता नहीं हमारा? और हम कहेंगे कि चलो बेटा आज अपन एसएल वर्ल्ड घूमेंगे, तो एसएल वर्ल्ड में तो ये अपने ही नहीं आसपास के सारे बच्चे आते हैं। ख्याल में तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं वैसे हमें भी अपने बच्चों पर ये संस्कार डालना बहुत आवश्यक है। क्यों क्या करें? ये हम समझते ही नहीं है कि यह जो बात है वह अगले दर पीढ़ी में कैसे पहुंचे, हम ही उनके ऊपर संस्कार करेंगे तो ये बात पॉसिबल है। तो अपनी क्या बात हो रही थी कि वो जो आचार्य जो होते हैं वो लिखते हैं और तालपत्र वहीं छोड़ जाते हैं, उसका अगर वो साथ में लेके जावे तो गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि उसके प्रति मोह चढ़ जाएगा। ये अरे भोजा लेके कौन घूमे, इसके लिए नहीं, ख्याल में आया तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी चालू हो जाए। भाई मुनियों के स्वरूप के हमें पहचान नहीं है, इसलिए ऐसी गड़बड़ी होती है, ख्याल में आए। तो मैं तो कहता हूं वो जो मुनिराज वन में विचरते होंगे तो उनके साथ में जो श्रावक भी होंगे, देखो वो भी कितने चाहने वाले कि ये जिन्हें जैन दर्शन के कहो या जैन फिलोसॉफी के, वो कितने चाहने वाले होंगे कि उनको भी लगता होगा कि हम रखें रखें रखें। आप जानते हैं धौला नामक जो ग्रंथ है वो अपने मुड़बिद्री में कितने सालों से मूल ग्रंथ पड़े हुए थे, दर्शन मात्र थे, और कोई जावे तो अच्छा आपको देखना है चलो एक गुल्लक में पैसा डालो, तो गुल्लक में कितना 2 रुपया डालते हैं कि 3 रुपया डालते हैं मालूम नहीं, इसलिए आजकल रिसीट बनाते रहे कि अभी कितना ग्रुप है 10 जनों का, चलो 100 रुपया दो, चलो अंदर जाओ, ऐसा कर करके सिर्फ जाके पैर पढ़ के आने का। तो ये हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र के शांति सागर महाराज, उन्होंने ऐसी कुछ तरकीब रची तो उसके ये आज धौला के प्रिंट हमको मिलते हैं, धौला शास्त्र लिखा हुआ उसके बहुत सारे 20 साल तो पंडितों ने उसके पीछे बहुत मगजमारी की, तब तो वो अभी उपलब्ध हो गए हैं। ऐसा ये जो शास्त्र है, यह शास्त्र भी हमें आज जो पढ़ने में आसानी से मिल रहा है, खाली हम बोले कि भाई जाओ वो दादर मंदिर से लेके आओ तो 10 कापी ले आए, अब दूसरे मांगने गए तो जिम लाने वाले को टाइम नहीं है। क्या करें, क्योंकि बहुत इजीली उपलब्ध है ना, ख्याल में। अरे पहले तो जब मालूम है आपको ये मोक्ष मार्ग प्रकाशककार पंडित टोडरमल जी जयपुर में उस तरफ उत्तर भारत में रहते थे, और ये धौला लाने के लिए उन्होंने इधर कर्नाटक में मुड़बिद्री में भेज दिया, तो वहां से वहां जाने में 6 महीने लगे। अभी तो तुम क्या बोलते हैं एरोप्लेन में बैठे तो 2 घंटे में यहां से बेंगलोर, और वहां 2 जने गए तो वापस आते थे एक मर गया, और हाथ में तो कुछ नहीं, जाके वो दर्शन करके आए, और फिर भी उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसे ग्रंथ को उन्होंने लिखा। देखो ये पहले कैसी धगस थी हा? और हमको तो यहां माटुंगा से यहां आने के लिए या क्या सायन में से यहां आने के लिए दिक्कत लगती है। मैं तो सच्ची कहता हूं जो दूर दूर से आते वो अधिक पुरुषार्थी जीव है। ये हमारे ज्ञान से ताड़देव कहां से आते हैं, सैंडर्स रोड से, सैंडर्स रोड, ये बिल्कुल बात है। ये देखो ये हमारे डॉक्टर साहब अभी 78 साल की उम्र है, रोजाना आते दिन में 4 घंटा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो बात हमें प्राप्त हुई है उस बात का हम अधिक से अधिक फायदा लेवे, क्योंकि न जाने अग्नि भव में कहां हम कौन से गति में कहां जाएंगे क्या मालूम। चलो आप क्या बताना चाहते हैं,
टोडरमल जी की बात बतानी थी कि गोमट सार की जो टीका लिखी उन्होंने वो मूल संस्कृत टीका के ऊपर से लिखी, पर वो संस्कृत टीका कैसी थी, कन्नड़ लिपि में थी, वो जयपुर निवासी हिंदी भाषिक, वो ढूंढारी भाषा वाले, और संस्कृत टीका जो उपलब्ध थी वो कर्नाटक लिपि में, जैसे हम देवनागरी लिपि में लिखी हुई पढ़ते हैं, है ना, गुजराती भी पढ़ने में फिर भी हम आदत से पढ़ जाते क्योंकि मराठी हिंदी गुजराती थोड़े थोड़े लेटर सेम है।
गुजराती का हमें वो प्रवचन सार का जेरोक्स निकालने, ये हमको पढ़ने को आएगा क्या नहीं, ऐसा पहला प्रश्न पूछते हैं। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा तो हम सीखेंगे। अरे वो तो कर्नाटक भाषा सीखे, वहाँ सिखाने वाला
लिपि लिपि वो भी हाँ। और उसमें से उन्होंने वो संस्कृत का अर्थ लगाकर और गजब की टीका लिखी।
तुम सोचो तो सही, ऐसे जीवों के शुभ परिणाम कैसे उच्च प्रति के और हमारे देखो कैसे घटिया है।
सादी सीधी सादी टीका नहीं, उसमें ऐसे ऐसे गणित है कि आपके आजकल के कंप्यूटर फेल हो जाए, ऐसे गणित है उसमें, ऐसे ऐसे गणित सब पूरा इन्हें विस्तार से समझाए हैं।
चलो हमें तो बात कुछ और बतानी थी, कि यहाँ ऐसे लिखने वाले भी कहते हैं कि यह जो मेरे में जो मेल रूपी ये जो राग रूपी परिणति है वह भी हटकर मेरी परिणति विशुद्धि थाओ, ये मैं फल चाहता हूं। देखो अभी क्या कह रहे, देखो ये भावार्थ में नीचे से दूसरी तीसरी, बीजू काई पन ख्याति लाभ पूजादिक चाहतो नथी। आ प्रकारे आचार्य टीका करवानी प्रतिज्ञा गर्भित एना फरना प्रार्थना करी। आ समयसार परम अध्यात्म शास्त्र छे, आ अडारमी वक्त सभा मां वंचाय छे। देखो स्वामी जी का कितना उपकार है, एक बार दो बार नहीं, आद्योपांत या 18 बार वहां जो उनका प्रवचन है वो लिखित रूप से हमें मिल रहा है। इसके पीछे भी कितनी मेहनत करी है, वो टेप सुने और टेप सुनते सुनते लिखते बैठे, वो टेप जो बोल रही वो सुनने का नहीं आया, फिर रिवर्स करने का, फिर उसको लिखना, फिर वो लिखने के बाद फिर उससे भी जो कोई अधिक सीनियर लोग होंगे वो बराबर पढ़ते हैं, 10 जनों को बोला था लिखने के लिए, यानी एक से अधिक, तो उनका सबके पास एक एक, फिर जिसमें किसी का शब्द गलत होगा या कोई अलग लिखा होगा, ऐसा कर करके वो फिर एक उसका स्क्रिप्ट बनाया और स्क्रिप्ट का यहाँ प्रिंटिंग किया, देखो। और हमको तो घर में बैठे बैठे मिल रहा है, तो कौन भाग्यशाली, हम क्या भी। आ समयसार परम अध्यात्म शास्त्र छे, आ 18वीं वक्त सभा मां वंचाय छे, यानी यहां तो लोगों के लिए बांच रहे हैं, कितने 18वीं बार, और स्वयं अकेले में कितनी बार बांचा होगा, जो इसमें से इतनी गहरी गहरी बातें उन्होंने जो, अभी जैसा हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कितना यह शास्त्र आउटस्टैंडिंग है, और क्या कहें अभी। आ समयसार नो एक शब्द पन सांभळी ने यथार्थ भाव समझे तो कल्याण थई जाय एवी आ अद्भुत चीज छे। आ ग्रंथमां शुद्ध नयनो एटले शुद्धात्मा नो अधिकार छे, समयसार शुद्ध जीव शुद्ध आत्मा ने बतावे छे, आखाए समयसार मां शुद्ध ने ध्रुव ध्रुव चैतन्य ने बतावे छे, जे मात्र सारभूत छे। यानी यह जो बात है बिल्कुल ये समय ने कहा ना आउटस्टैंडिंग है, सारभूत यानी ये पूरे विश्व में अगर कोई सारभूत होगा तो यह स्व का शुद्ध आत्मा है, और उसका स्वरूप समझना है वो कैसा है ये समझना है तो ये समय सार पढ़ना, ऐसा कह रहे हैं। ओम परमात्मा ने नमः त्याथी शुरू करियो छे श्रीमद कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समयसार जी शास्त्रना जीव जीव अधिकार नो प्रारंभ थाय छे। टीकाकार श्री अमृतचंद्राचार्य देव छे जेमने आ शास्त्रनी टीका नाम टीकानु नाम आत्मख्याति आप्यु छे। आत्मख्याति एटले के शुद्ध चैतन्य घननी प्रसिद्धि, ये क्या बताना चाहते हैं, ये आत्मा कैसा है, तो कहते हैं घन स्वरूप है, और वह घन कैसा है तो कहते हैं शुद्ध चैतन्य, यानी ये शुद्ध चैतन्य पना जो है वो ठसो ठस भरा हुआ है, वो घन बना हुआ है, यानी ऐसी बीच में कहीं जगह भी नहीं कि जहां अन्य कुछ घुस जावे, ये मेल पना जो है ना परिणति जो विभाव रूप है ना वो अंदर घुस जाए, ऐसा ना घन स्वरूप है। तो स्वामी जी तो ऐसा कहते थे कि अभी यहां को तो हमको पता नहीं, लेकिन वहां सौराष्ट्र में तो ऐसी ठंडी पड़ती थी कि वहां उसमें घी ऐसा जम जाता था, तो उसमें वो तावे तो बोलते आप लोग गुजराती लोग, वो अंदर घुसावे तो वो बाका हो जावे, ऐसा जम जाता था, तो उसको घन स्वरूप कहते हैं। हाँ, ऐसा ये आत्मा कैसा है, शुद्ध चैतन्य घन है, यानी उसमें ऐसी शुद्धता, शुद्धता कौन सी शुद्धता, चैतन्य में शुद्धता है। तो कहते आत्मख्याति एटले शू के शुद्ध चैतन्य घननी प्रसिद्धि, ख्याति यानी प्रसिद्धि। प्रारंभ में अनुवाद करता श्रीमान पंडित जयचंद्र जी मांगलिक करे छे। अभी यहां जो शुरू में जो उन्होंने 5 श्लोक दिए वो यहां पर आएंगे, देखते हैं जो 5-6 जो भी है वो दोबारा वहां से पढ़ेगा और यहां से पढ़ेगा, एक ही है। छह श्लोक है ना, यहाँ पहले पेज पे गुजराती अनुवाद लिखे जो उन्होंने लिखे उसी को हम देखेंगे यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक छह पर। प्रारंभ मा वो हो गया तेरा शास्त्र किधर गया और राजेश का? अरे मैं समझा कि उधर से तूने दिया। कोई बात नहीं। पृष्ठ क्रमांक छह पर आइए आप। श्री परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मणा नमः।
नमाय चाहिए हाँ।
और आगे नमीय लिखा है, नमाय बराबर है। समय सार शासन करूं देश वचन मय भाए। अभी क्या कह रहे हैं देखो, श्री सर्वज्ञ परमेश्वर एवा परमात्म देव शारद केता सम्यक शास्त्र अने सुगुरु निर्ग्रंथ गुरु ए त्रणे ने नमी ने समय सार रूपी शास्त्र नो देश मा चालती भाषा मा अनुवाद करूं छू। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा, उन्होंने ये हिंदी में लिखा है और उसका यहाँ गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। वो क्या कहते हैं कि जो परमात्मा स्वरूप जो है उनको मैं नमन करूंगा, परमात्मा देव को। कैसा है वो परमात्मा देव? यानी स्वयं का आत्मा, इसी को परमात्मा देव का है। और वो कैसा है? सर्वज्ञ परमेश्वर जैसा है। यानी स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य परमात्मा स्वरूप है, ऐसा कह रहे हैं। शारद कहता सम्यक शास्त्र अने सुगुरु एटले निर्ग्रंथ गुरु। सुगुरु लिखा ना, तो वो गुरु किसको कहना, इसमें भी झगड़ा चलता है। तो गुरु तो वही है जो निर्ग्रंथ है, उन्हीं को गुरु कहेंगे, उन्हीं को मुनि कहेंगे। ख्याल में ऐसा भले कहते होंगे, परम पूज्य परम कृपाणो सदगुरु देवनो जय हो, लेकिन वो वे गुरु नहीं है, वे तो शिक्षा गुरु है। ख्याल में आया? यहाँ क्या कह रहे हैं, जो सुगुरु है, सुगुरु यानी किसको कहा? निर्ग्रंथ गुरु। निर्ग्रंथ का अर्थ मान जानते हैं आप, यानी जिसको जिनको किसी भी प्रकार की गांठ यानी ग्रंथि नहीं है। कौन सी ग्रंथि? के पर पदार्थ के प्रति कोई अभिलाषा कहो या मोह कहो या उसमें अपनत्व कहो, ऐसी जिनमें किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, जो निष्परिग्रही है। तो यानी जिनके किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है, ऐसे जो है उनको गुरु कहते हैं। ख्याल में आया? और ऐसे जो देव है, ऐसे जो शास्त्र है और ऐसे जो गुरु है, यही अष्ट द्रव्यों से पूजनीय और वंदनीय है। उसके अलावा अन्य कोई नहीं। और अगर कोई गलती से और भूल से अष्ट द्रव्यों से अन्य किसी जीव को यानी सच्चे देव गुरु और शास्त्र को छोड़कर अगर उनकी पूजा भक्ति करता है अष्ट द्रव्यों से, तो वह बिल्कुल गलत है। उसके तो मिथ्यात्व का तो पार नहीं है, ऐसा कहना। क्या कहा यहाँ, क्या लिखते देखो, सुगुरु निर्ग्रंथ गुरु ए त्रणे ने नमीने समय सारूपी शास्त्र नो देश मा चालती भाषा में अनुवाद करूं छू। अभी इन्होंने अपनी भाषा में यानी हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है। किसका? ये जो अनुवाद करता है, काहे का अनुवाद कर रहे हैं? आत्मख्याति का। हाँ जी, अगला।
शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनियो मंगल रूप प्रसिद्ध है नमो धर्म धन भो।
जेम साकर शब्द वाचक छे अने साकर पदार्थ ते वाच्य छे। यहाँ लिखा ना वाचक वाचन योग। पहला क्या बताते हैं? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म कई। अभी क्या कहना चाहते देखो, देखो ये पहले के वाचक और वाच्य किसको कहना, तो वाचक यानी जो यहाँ शब्द है, कोई भी शब्द है वह वाचक है, और वह जिसको बता रहा है वह वाच है। अभी हम पिनांग कहते हैं तो पिनांग शब्द यह वाचक है, और जो पिनांग जिसका नाम है वह वाच्य है। यहाँ क्या बताया, साकर जो शब्द है वह वाचक है, तो वो किसको बता रहे, तो साकर नाम का जो पदार्थ है उसको बता रहे। तो आत्मा यह जो शब्द है वह वाचक है, और जो खरेखर जो आत्मा है वह वाच्य है। अब क्या बताते, देखो जेम साकर शब्द वाचक छे अने साकर पदार्थ ते वाच्य छे, तेम समयसार रूप शब्द ब्रह्म वाचक छे। ये समयसार जो शब्द है वो कैसा है, ब्रह्म वाचक छे, यानी आत्मा को, ब्रह्म यानी आत्मा। अभी इस पर से याद आ गई इसलिए बोल देता हूं कि हम कहते हैं ना ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी का अर्थ तो जो आत्मा में चरता है, आत्मा में रमणता करता है, वही ब्रह्मचारी है। जो कोई क्रिया विशेष का त्याग करता है उसको ब्रह्मचारी तो उपचार से कहते हैं। किसके उपचार, जो स्वयं स्वरूप में लीन है, ऐसे जीवों के ऐसे क्रिया का त्याग जो है उसको उपचार से ब्रह्मचारी कहेंगे। ब्रह्म यानी आत्मा, तो यहां क्या बताते हैं कि समयसार रूप शब्द ब्रह्म जे छे ते वाचक छे, अने तेनु वाच्य पूर्णानंद स्वरूप भगवान परम ब्रह्म छे। यानी यहां समय सार शब्द कहा तो समय सार किसको इंडिकेट करता है, तो कहते यहां जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है वह जो कैसा कहा, पूर्ण आनंद स्वरूप ऐसा जो भगवान परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म यानी उत्कृष्ट ऐसा आत्मा, वह उसका वाच है। ते बे बच्चे वाचक वाचनो संबंध छे, किसमें किसमें, समयसार रूपी जो शब्द है और वह शब्द ब्रह्म जो है वह परम ब्रह्म को सूचित करता है, ये इन दोनों में वाचक वाच्य का संबंध है। अब मंगल रूप प्रसिद्ध ए शास्त्र मंगल रूप प्रसिद्ध छे, मंगल एटले पवित्रता ने प्राप्त करावे अने अपवित्रता नो नाश करावे। पंडित बनारसी दासे समय सार नाटक में कहूं छे कि आ शब्द ब्रह्म अने तेनु वाच्य जे परम ब्रह्म तेने जे जाने छे तेना अंदर थी फाटक खुली जाए छे। यानी क्या, ये आत्मा के जो अभी बंद हो गया ना, मतलब आत्मा को नहीं दिख रहा है, क्यों, वो फाटक के अंदर यानी कपाट के अंदर बंद है, तो कपाट का दरवाजा खुलने से अपने को अंदर की लक्ष्मी दिखती है, मतलब अंदर का माल दिखता है, अंदर का जो वैभव अपने घर में छुपाया वो सब दिखता है। वैसा यहाँ जो वाच्य वाचक ऐसे जो दो शब्द बताए ना, उसका यथार्थ अर्थ कोई जानेगा तो उसके आत्मा के फटक खुल जाते हैं। ये समयसार नाटक भी एक बार हम जरूर स्वाध्याय करेंगे, मेरी बहुत इच्छा है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। चलो जिंदे रहेंगे तो जाएंगे आगे। क्या कह रहे हैं, फिर से थर्ड लाइन, आ शब्द ब्रह्म अने तेनु वाच, यानी शब्द ब्रह्म यह वाचक है और तेनु वाच कौन है, परम ब्रह्म यानी ये आत्मा, तेने जे जाने छे यानी आत्मा ने जे जाने छे तेना अंदर ती फाटक खुली जाए छे, फाटक खुलत है एम लख्यू छे। नमु धर्म धन भोग एटले के मारी धर्म रूपी, ये ऊपर जो है ना, नमो धर्म धन भोग एटले के मारी धर्म रूपी लक्ष्मी ना भोग ने भोगो तो हूँ नमु छू। आनंद रूपी लक्ष्मी ते खरेखर आत्मानु धन छे, आनंद नो नाथ प्रभु आत्मा तेनी दृष्टि करता, पर्याय मा जे आनंद नो लाभ थाय तेनो भोग एटले अनुभव करूं छूं। आहा, अजोड़ शास्त्र छे, जगत ना भाग्य के आवु शास्त्र रही गयूं अने ते पण शुरुआत थी पूर्ण सुधी पूरु थई गयो। क्या कहा, ये जगत ना भाग्य खुल्या छे, और विशेष क्या बात है, जो शुरू हो गया और पूरा हो गया। ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं कि उसमें से कुछ पार्ट हमको मिलता है और आगे की बात नहीं मिलती। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये तो मुनि ने लिखा हुआ, जो हम मैं उनकी बात कर रहा था कि जो हमने आप्तमीमांसा देखा है, देवागम स्तोत्र, उसके तो हमें 110 ही श्लोक उपलब्ध हैं, बाकी आगे कुछ नहीं है। और उन्होंने तो उसमें बहुत सारे श्लोक लिखे थे, जैसे भाई साहब ने बताया मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अधूरा है, खाली 9 अधिकार है, और लिखते तो न मालूम और कितने अधिकार होते और क्या होता था। अरे वो तो पूरे शास्त्रों का निचोड़ है उसमें, वो भी नहीं पूरा हुआ। इसलिए कहते हैं कि अजोड़ शास्त्र, पहली बात तो कहते कि शास्त्र कैसा है, तो अजोड़ है, अनपैरेलल है, जल्दी समझ में आए। यानी जगतना भाग्य के आऊ शास्त्र रही गयू, क्योंकि अन्य इन कुंद कुंदा आचार्य के अन्य शास्त्र भी उपलब्ध नहीं है, कुछ कुछ उपलब्ध है, इसमें से ये 5 तो अभी नक्की है। तेपन शर्वाथी पूर्ण सुधी पूरु थियु। अभी ये जो है, अच्छा बोलो बोलो चलो।
ओ यहाँ जरा उलट सुलट है, पहले पेज पर जो है वो सही है, मैं उसी को पढ़ती हूँ।
अच्छा फर्स्ट पेज निकालिएगा साहब।
नयनय सारल हे शुभवार, पद पद मारद हे दुखकार, लय लय पार ग्रहे भवदार, जय जय समय सार विकार।
अभी देखो, मैं तो समझता हूँ कि इसका अर्थ हम कल ही देखेंगे, क्योंकि 2 मिनट में ये तो पूरी बात होने वाली है नहीं। मैं दूसरा भी कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जावाणी के ज्ञान तय सूजे लो कालो, सोवाणी मसकणमो सदा देता।